आज हम सभी के बीच में आदरणीय भाई जी पहुंचे हुए हैं। ये हम सभी का बहुत विशेष विशेष सौभाग्य है, इसलिए जोरदार करतल ध्वनि से हम आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार आत्म प्रकाश भाई जी, आपका जन्म 1937 में हुआ। आपने शिक्षा बीएससी इंजीनियरिंग की, ज्ञान आपको 1957 में प्राप्त हुआ और आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में 1961 में समर्पित किया। वर्तमान में आप संपादक ज्ञानामृत तथा द वर्ल्ड रिन्यूअल के हैं, प्रकाशक ईश्वरीय साहित्य, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के हैं, मेंबर राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के हैं। आपका और परिचय है, आप 20 वर्ष की युवावस्था में ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। लौकिक पढ़ाई में आप सदा छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे। 1961 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने पर साकार बाबा के वरदानी बोलों ने आपको ईश्वरीय सेवा में समर्पित करा दिया। आपने विद्यालय की ईश्वरीय सेवा के प्रारंभ काल में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप अपने परिवार में माता पिता भाई बहनों सहित सभी को ज्ञान में लाने के निमित्त बनी। पहले आपने दिल्ली में चित्रशाला बनाई, जिसके द्वारा भारत के पूरे ही सेवा केंद्रों पर म्यूजियम, प्रदर्शनी, मेले आदि तैयार किए गए। बात सदा की मार्गदर्शन में आपने अनेक नए नए चित्र आदि तैयार किए। इसके बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भ्राता आदरणीय भ्राता जगदीश जी के साथ ईश्वरीय साहित्य की सेवा में आपने अपना अथक सहयोग दिया। 1981 में आपको ज्ञानमृत द वर्ल्ड रिन्यूअल का संपादकीय भार सौंपा गया। 1992 में प्यारे बाबा ने आपको शांतिवन बेहद घर में बुलाकर देश विदेश की सेवाओं के निमित्त बनाया। मीडिया विंग का निर्माण होने पर आपको इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। आप बहुत ही सरलचित सर्व के स्नेही, सहयोगी, यज्ञ प्रति ईमानदार, बड़ों के आज्ञाकारी और अथक सेवाधारी हैं। ऐसी महान विभूति के हम सम्मुख हैं, वो हमारे सम्मुख हैं। आज क्लास का विषय है, उनके द्वारा हम सुनेंगे साकार मम्मा बाबा के साथ के अनुभव, आदरणीय भाई जी के द्वारा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाप दादा के ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, पद्मा बदम भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने हमको चुन लिया और अपना बना लिया, हमको ढूंढ लिया। इतनी बड़ी दुनिया है, इस वक्त लगभग 700 करोड़ मनुष्य आत्मा सृष्टि पर विराजमान है, 7 बिलियन पीपल, उसमें से हम कितने हैं? ब्राह्मण कुलभूषण कितने हैं? कहते हैं 9 लाख है या ज्यादा होंगे, बहुत कम परसेंटेज है। उनको आके ढूंढा और चुना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। स्वयं भगवान की, शिव बाबा की डायरेक्ट संतान, ईश्वरीय संतान बने हैं, और उससे अब यहां कैसे आए? उससे मिलन मनाने के लिए पधारे आप सभी। वो तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम उससे मिलन मना रहे हैं। हमने उसको पा लिया, निश्चय पक्का, अतिशयोक्ति नहीं है। किसे पूछो, किसे को कहो कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, वो तो आश्चर्य कहेंगे, हंसेंगे भी सही, ये क्या कहते हैं। वो कहेंगे जिनको भगवान मिल जाता है वो तो पता नहीं क्या बन जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि पुरुषार्थ जो चलता है हमारा, कि अभी हमारा पुरुषार्थ को परमात्मा को कोई मिलने का पुरुषार्थ नहीं, उसको ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं है, देखने का पुरुषार्थ नहीं है, परंतु हमारा पुरुषार्थ भगवान को मिलने के बाद और तेज होता है। जो वो हमें ईश्वरीय इतना ऊंचा पद देने वाले हैं, इतना ऊंचा मर्तबा देने वाले हैं, हम उसको पाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो तो केवल देखने का कहता है, एक रिंचक बात दिख जाए। तो भगवान को हमको ढूंढा, हमें भी ढूंढा, आपको भी ढूंढा, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। केवल चुना, कोई चीज चुनी जाती है उसका कुछ लाभ लिया जाता है या उसको कुछ यूज किया जाता है। तो बाबा ने भी हमको ढूंढा, हमको निकाला, हमको अपना बनाया और अपने किसी कार्य में लगा दिया, ये उस भी बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली। आप सभी जो कोई सेवाधारी बन के आए हुए हैं, कोई अपने सेवा केंद्र संभालते हैं, कोई सेवा में लगे हुए हैं, यदि भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, भगवान ने अपना मददगार बना दिया, वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड, हम भगवान के मददगार हैं। कहते हैं ना वो कहावत है, खुदा उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, परंतु हम वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड, हम खुदा के खिदमतगार हैं, मददगार हैं। तो बताइए शिव बाबा, बाप दादा, हमारी कितनी मदद करता होगा, संभालता होगा, हम बहुत हमारा मददगार है। तो ऐसे हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, हमें भी आज से कितने 57-56 साल पहले बाबा ने ढूंढा, अपना बनाया। हम पढ़ते थे, जैसे पहले बताया आपको, पंजाब पटियाला में पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो कहते ना ढूंढा कहीं कैसे, तो किसी ने जो उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी पढ़ने के लिए आए, जबरदस्ती बाबा ने उनको कहा कि जाओ। वो कहता था, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है, आप सभी को मालूम है, बाबा की मुरली में भी थोड़े दिन पहले आया था, जब बाबा ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया, अनुभूति कराई, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है ना, एक 4-5 दिन मुरली में आया था, वो क्या किया बाबा ने, सब कुछ अपना समर्पण कर दिया, स्वाहा हो गया, सारा इस ईश्वरीय कार्य में लगा दिया बाबा ने एकदम। तो भाई बाबा ने कहा कि उस मुरली में था, हमने तो बाबा ने, मैं समझा था कि जल्दी विनाश हो जाएगा, विनाश आया क्या? फिर बाबा ने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है। बाद में मालूम पड़ा बाबा को, जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, जब स्थापना का साक्षात्कार हुआ कि नई दुनिया ऐसे आनी है, तो बाबा एकदम स्वाहा हो गए, सब कुछ श्री इस ईश्वरीय कार्य में लगा दिया, उसमें समर्पण कर दिया, प्रभु अर्पण हो गए। उसके बाद बाबा को फिर ये मालूम, धीरे धीरे रियलाइज हुआ, कभी विनाश तो बाबा कहते, दादियों को भी बाबा कहते थे अगली दिवाली नहीं आएगी। हम भी जब इस ज्ञान में आए, ऐसा लगता था कि विनाश हुआ के हुआ, ऐसा लगता था, क्योंकि वैराग के लिए विनाश भी एक पॉइंट बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज आई। किसी प्रकार से हमें भी बाबा ने चुना, किसी को भेजा, उसने हमें ज्ञान दिया। एक हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी थे, इंदौर जोन में है, उनको उन्होंने हमें परिचय दिया कि आप आत्मा हैं। मैं थोड़ा सुना रहा हूं बैकग्राउंड, बाबा मामा से मिलने से पहले क्या अनुभव हुए, उससे पहले थोड़ा कैसे ज्ञान मिला वो बता रहा हूं। तो हमने उसने ये कहा कि आप तो आत्मा है। हमने कहा आत्मा कैसे है, बहुत दिन डिस्कशन होती रही। वो कहे आप आत्मा है, शरीर नहीं है। हम तो कहे हम आत्मा की बात कैसे माने, ये तो शरीर है, मशीनरी है, उसमें कोई एक पुर्जा फेल हो जाएगा तो मशीन बेकार हो जाएगी, आत्मा की इसमें क्या बात है। चलती रही डिस्कशन बहुत दिन तक। अंदर हम मानते थे, क्योंकि हिंदू धर्म को तो मानते थे, आत्मा शरीर सब चीज बात थी। एक दिन उन्होंने कहा कि आप एक मान जाओ कि आप आत्मा है। बस हमने कहा अच्छा, मैं आज मानता तो हूं, आज फिर से ये मैं निश्चय करता हूं कि मैं आत्मा हूं। अभी शुद्ध आत्मा की बात नहीं, आत्मा हूं। बस यही मेरा कहना था कि मैं आत्मा हूं, बस इतना ही बोलना था, ये मानना था। उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, अनुभव होना शुरू हो गया, शरीर से न्यारापन महसूसता होनी शुरू होगी। जिसको भी देखे आत्मा भ्रकुटी में आए, उस वक्त कोई बिंदु रूप नहीं था, जो बाबा बताते थे अंगुष्ठ सदृश बाबा कहते थे तब, अभी ज्ञान नया नया रिफाइन हो रहा था। तो हम कहते थे आत्मा भ्रकुटी में निवास करती है, अंगुष्ठ सदृश, ये हमें ज्ञान मिला। उसी अनुभूति में हम चलते रहे, एकदम शरीर से जारापन महसूस हुआ। जिसको भी देखे उनकी भ्रकुटी में देखे, आप आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, सबको आत्मा रूप में देखने का स्वतः पुरुषार्थ हो गया, स्व अनुभूति होनी शुरू होगी, खुशी आने लगी, शांति आने लगी, आनंद आने लगा। इसी एक बात से बड़ा आनंद मजा आ गया। बात जो हम पहले पिक्चर देखते थे या बातें करते थे या कैरम खेलते थे या वो करते थे, सब समस्त खत्म हो गया, एकदम इसे अंतर्मुखता में हम चले गए। बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया। तो हमने उसके कहा भाई को, भाई अब हमें ये क्या इतना जबरदस्त चीज है, हमें पूरा ज्ञान सुनाइए। तो उनमें आत्मा क्या है, परमात्मा शिव, शिव ही परमात्मा है, ये ज्ञान सुना तो वंडरफुल लगा। हम पहले हम कुरुक्षेत्र में रहते थे, वहां दुख भंजनेश्वर कई के मंदिर थे, स्थानेश्वर रामेश्वर इतने मंदिर थे, जाते थे, शिवलिंग था, शंकर था। तो ये जो परमात्मा कौन है, ये एकदम बुद्धि में बैठ गया। उसके बाद राम क्या है, रावण क्या है, कृष्ण क्या है, कंस क्या है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष क्या है, ये जब ज्ञान मिला बहुत ही सुंदर लगा। क्योंकि हम गीता पहले पढ़ी हुई थी, बचपन से ही भागवत रामायण पुराण ये सब हमने सुन रखे थे 10 साल की एज तक। तो जब ये मिला कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का और हूबहू रिपीट होता है, इससे तो बहुत सुंदर और ये निश्चय बार क्या है। क्यों, हम पहले पढ़ते थे अर्जुन गीता में है, हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे, ये राजा रजवाड़े की नई बात नहीं है। तो बिल्कुल हूबहू जिस बात की हमने पढ़ी हुई थी वो बिल्कुल मन में बैठती कि बुद्धि उसको स्वीकार करती कि 3-4 दिन में सारा ज्ञान हमको समझ आ गया। बड़ा वंडरफुल लगा, अनुभूति होने शुरू होगी, योग में टिकना टिक के हम उसमें, तो बहुत एक चेंज आ गया लाइफ में। और ये सारा इसमें हम पवित्र रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ये भी यहां से इस पॉइंट मिली। तो सब बातों को, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, 3 लोग क्या है, इन सब बातों को सुन करके बुद्धि बिल्कुल स्थैर्यम और विकसित हो गई, खुशी होगी। कहते ना अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान से भी होता है। जब ये आप जब आपने कभी ये ज्ञान सुना होगा, प्रदृष्टि देखी, किसी ने सुनाया होगा, आपको बड़ी खुशी हुई होगी। जो अपने घराने के हैं उनको ये ज्ञान समझ आने के बाद भी एक खुशी होती है, वो कौन सी खुशी है, कोई स्थूल खुशी तो नहीं है, ये अतीन्द्रिय सुख है। ज्ञान से भी खुशी प्राप्त होती है, मजा आनंद आता है। तो वो देखो अतीन्द्रिय आनंद कहो या खुशी को, बहुत आनंद आ गया। तो हमने कहा इतना ऊंचा ज्ञान, वंडरफुल ज्ञान, देखो ये ज्ञान जो है वंडरफुल है, साइंटिफिक है, बुद्धिगम्य है, प्रैक्टिकेबल है, रैशनल है, कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है, इतना ऊंचा ज्ञान है। तो हमें तो ज्ञान से निश्चय हुआ कि ये ज्ञान किसी ना शास्त्र में है ना किसी गुरु गोसाई ने दिया है, ये कहां से आ सकता है। ये ज्ञान देने वाला स्वयं ज्ञान सागर के और कोई नहीं हो सकता। तो हमने उनसे पूछा, बाबा कहना जो अपने नजदीक बाबा के बच्चे घराने के होंगे वो जल्दी भागेंगे बाबा से मिलने के लिए। तो हम 4-5-7 दिन हुए थे, हमने कहा बताओ भी ये क्या है, कहाँ है, किसने दिया ज्ञान ये। तो हम मुरली सुननी शुरू कर दी 4-5 दिन में, तो इतना अच्छा लगा। तो उन दिनों में बाबा मम्मा जो थे दिल्ली में आए हुए थे, पटियाला से दिल्ली। आप देखेंगे 3 हस्तियों की सारे धर्मों में मान्यता है, एक तो गॉड की, खुदा की, ईश्वर की, सब धर्म वाले किसी न किसी रूप में मानते हैं, कहते हैं भले कोई नास्तिक भी हो वो भी अंत में गॉड को याद करता ही होगा। दूसरी ब्रह्मा और सरस्वती की हिंदू मानते हैं, एडम एंड ईव क्रिश्चियन कहते हैं, आदम और बीबी मुसलमान कहते हैं। लगभग सभी धर्मों में इन 3 हस्तियों की तो मान्यता है। तो हम किससे मिलने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबा मम्मा जो हैं दिल्ली में आए हुए हैं। तो बड़ा वो था, क्यूरियोसिटी थी कि जिस जिनके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है, जो जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है, जो कि नई दुनिया की स्थापना के मददगार है, जो बनाने वाले हैं, उनसे तो मिलना चाहिए। तो हम चल पड़े, 5-7 दिन हुए थे बाबा मामा से मिलने के लिए, दिल्ली रजौरी गार्डन में पहुंचे। तो रात्रि को पहुंचे, पहली दफा दिल्ली में जा रहे थे, जिस कोठी में बाबा मामा रहे हुए थे वहां का 11 बजे रात को पहुंचे। वातावरण बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। प्रातः उठे, बाबा मामा की क्लास में गए, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल मिलना हुआ। पहला जो इम्प्रेशन था, जैसे ऐसे मिल रहे हैं, सामने 2 फरिश्ते बैठे हुए, वाइट, सब चीज वाइट ही वाइट है। उसके बाद ऐसे जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे मिल रहे थे बाबा, ऐसे दिख रहे थे जैसे यही वास्तव में मेरे, लौकिक कहो अलौकिक कहो, या ही मेरे माता पिता है, यही हमारे वास्तविक माता पिता है, ऐसी फीलिंग आई। हमें किसी ने नहीं कहा था कि बाबा मामा से कैसे मिलना होता है, बाबा से मेरे उन गोद में जा करके, जप्पी पा करके बाबा ने थपथपाया। और जो मुझे पहला वरदान मिला, मैं आपको सुनाता हूँ बाबा ने मेरे प्रति क्या कहा। हम कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं किसी की नहीं जानता हूँ, मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ या जानी जाना नहार नहीं हूँ, तो लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि बाबा अंतर्यामी भी है, जानी जाना नहार भी है। बाबा के महावाक्य थे, वरदान थे मेरे प्रति बाबा। बच्चे क्या कहा, ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ये काम आने वाली नहीं है। बोलिए, देखो उस वक्त अभी फर्स्ट ईयर था, तो मुझे भी लगता था जब वैराग था कि विनाश सामने खड़ा, उस वक्त भी विनाश की तैयारी थी। 1957 था उस वक्त, क्या ये प्रचलित था कि 1857 में लड़ाई, इंडिपेंडेंस वार हुई थी, अब 1957 में भी कोई ऐसा झंझट होगा, कोई लड़ाई होगी या कोई चेंज आएगा। उस वक्त नहर स्वेज और मिसर और अरब में बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो कभी भी लड़ाई छिड़ सकती थी, ऐसा थर्ड वार कभी भी हो सकती थी। तो हमने कहा ठीक है बाबा, हमें तो लगता था विनाश हुआ के हुआ, जल्दी विनाश होगा। तो हमने कहा बाबा ठीक है, आप कहते हैं तो क्या करना है पढ़ाई पर। तो बहुत और ही वैराग आ गया, तो हमने वापस आकर बाबा को एक लेटर लिखा इंग्लिश में, और बाबा ने भी उसका जवाब इंग्लिश में दिया कि यही इंस्ट्रक्शन दी कि बी पेशेंट, यानी सब्र रखिए, और ये जो ज्ञान है अपने लौकिक परिवार को और साथ साथ जो को इंजीनियर्स हैं उनको ये ज्ञान दीजिए। तो हमने कोशिश की, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, उनको ज्ञान दिया। उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, अब तो है ना ज्ञान नम्रता है, सब धारणाओं की योग की बातें हैं। उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, जिसमें विशेष सारा ज्ञान होता था। आप उसका एक पेज खोलेंगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा पेज खोलेंगे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, तीसरा 84 लाख, जितनी भी बाबा की कंट्रास्ट की बातें थी वो सारी उस मैगजीन में होती थी। और कोई ये आजकल की जो हम अनुभव ये वो भी अनुभव करने वाले पैदा हो रहे थे, हमने वो ली, हम सब वो बांटते थे अपने उनको इंजीनियर्स को। वो कहती थी ये क्या बात है, नई नई बात है, आज बाबा ने कहा ना फिर औरों को ज्ञान सुनाओगे तो वो उनको बहुत नया लगेगा। कहते ये बातें कैसे हो सकती है, परमात्मा सर्वव्यापिनी, दुनिया सारी मानती है सर्वव्यापिनी, आप क्या तो सर्वव्यापिनी। उससे डिस्कस 5 मिनट भी डिस्कस करते थे वो कन्विंस हो जाता था। चलिए एकदम वो इतनी फोर्स होती थी, मोमेंटम होता था, एंथुजियाज्म होता था हमारा, वो कन्विंस होते जाते थे। हमारी एक स्टूडेंट्स की क्लास वहां हो गई, इस प्रकार से चला, तो वहां सेंटर खोल दिया, वहां कई प्रकार की सेवा हुई। फिर मैं बाबा ने कहा था लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, हम अपने लौकिक घर में गए थे, वहां पर लौकिक परिवार माताजी पिताजी आसपास सबके लोगों को ज्ञान दिया, भोले भाले गांव के लोग थे। तो हमारे लौकिक पिताजी बड़ी भक्ति करते श्री कृष्ण के, अति अथाह भगत थे, बहुत भगत थे। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि अगर आपका बाबा अगर हमें कुछ दिखा दे, मैं बता रहा हूं कैसे बाबा बच्चों को टच करता है, तो फिर हम मानेंगे परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है कि आपका बाबा ठीक है। यानी कोई साक्षात्कार करा दे तो फिर मानूंगा मैं। आप जानते हैं हमारे यहां भोग लग, उन दिनों में तो हफ्ते में 2 बार भोग लगते थे, गुरुवार को भी और संडे को भी। और एक हमारी ध्यानी दादी होती थी, आती थी अंबाला से विशेष भोग लगाने के लिए, वो ऐसे हाथ करेंगे, कभी फूल देंगे, कभी वो देंगे, कभी वो देंगे, संदेश लेके आएंगे। हम भी देखते थे, ले बाबा कहते था ध्यान के भी कोई खास बात नहीं है, ध्यान से कोई वो पद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ध्यान को बाबा अरे को ज्यादा वो वैल्यू नहीं देते थे। हम देखते थे, हम कहते ठीक है जो भी है, हम तो ज्ञान से मतलब है, ध्यान की बात नहीं। मैंने पिताजी से कहा कि भाई मैंने, मुझे तो ध्यान अभी कोई हुआ नहीं, कभी देखा नहीं मैंने, कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ, तो मैं कैसे कर सकता। फिर भी हम एक दिन गुरुवार को बैठे थे, ध्यान वो भोग लगा रहे थे बाबा को, अपने गांव में ही हम थे, कोई ना कोई बहन थी ना किसी को अभी पूरा ज्ञान भी नहीं था। तुम्हारे लौकिक फादर उठ के खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, वो उनके हाथ में नहीं आता, तो वो बड़े उदास हो जाते हैं। तो वो नीचे आते हैं, जैसे मुझे कहते हैं कि मैं कहीं गया, यहां नहीं था, ऊपर कहीं गया, बहुत छोटा सा श्री कृष्ण का, बहुत छोटा बच्चा, बड़ा सुंदर, अति सुंदर, वो मेरे सामने आया, मैं उसको पकड़ता हूं, तो कभी यहां आ जाते हैं, कभी वहां आते हैं, कभी वहां आते हैं, तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता। तो फिर वो ब्रह्मा बाबा सामने आया, वो कहते हैं बच्चे जब तुम निश्चय बुद्धि होगे और इसको इस ज्ञान को धारण करोगे, धारणाओं पर चलोगे, तो श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो ये बाबा ने उनको संदेश दिया, क्योंकि इतनी भक्ति उन्होंने की हुई थी और वो निमित्त थे हमारे सारे लौकिक परिवार के, जब हम कह पड़े थे तो मैंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं तो अब करूंगा। उनको हमने सारा होता ना योग लिख दिया, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, जैसे अभी कमेंट्री होती है, मैंने उर्दू में उनको लिख दी। वो चलते चलते भी, बैठे बैठे भी उसको अंदर अंदर रिवाइज करते रहते थे। तो अगले हम गुरुवार को फिर भोग बैठे, फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में गए और वो श्री कृष्ण उनके सामने आया, वो उनकी गोद में आया, इतने उनके आंसू आए, इतने वो खुश हुए, सारी उसकी जो थी वो मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण कर दी। बहुत खुश हुए, सारा परिवार देख रहा था, सब गांव वाले भी देख रहे थे। इस चीज को देखकर के हमारे और जो वो हमारे परिवार के वो ज्ञान में आ गए, वो संदेश ही बन गए। हम बताएं आप, हम के बाबा, हम पिताजी कहते जाओ संदेश लेके आओ, वो संदेश लेके आते थे। हम पिताजी ये पूछ के आओ बाबा से, हम जमीन बेचे का ना बेचे, कोई भी संदेश देंगे, वो छोटा मोटा सारा संदेश लेके आते थे और मोस्ट एक्यूरेट संदेश था। ऐसे नहीं कि कहीं ऐसी बात थी, पूरा जो ठीक ठाक होता था भी वो आगे क्या आने वाला है ये भी संदेश लेके आते थे। हम तो बड़े खुश हुए जो हमने कहा देखो हमारे लौकिक परिवार में कोई तो संदेश ही बना, किसी को तो साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार से पूरा परिवार, माता जी, पिताजी, तीन चार भाई, सारे इस ज्ञान में चल पड़े। हमें बड़ी खुशी, बाबा ने जो कहा था बच्चे अपने लौकिक परिवार को ज्ञान में लाओ, तो वो भी हमारा पूरा हो गया। इसी बीच में हम पढ़ते पढ़ते वो इंजीनियरिंग पास हो गए और फ्री हो गए। लेकिन मैं एक दो और बातें बताता हूँ। जब बीच में हम एक बार मधुबन आए, हम बाबा की बात सुनाते क्या कैसे शिक्षा देते थे। ऐसे नहीं कर्मातीत बन गए, बहुत बाबा ने भी पुरुषार्थ किया होगा ना, कितने 37, 36 से लेकर 69 32 साल पहले भले भक्ति बहुत की थी, जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना, सब कुछ नहीं, कोई रिंचक मात्र भी कुछ ना रहे, एकदम संपूर्ण, उसमें टाइम लगता है, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि छू मंतर से हो जाता है। तो हम जब एक दफा मधुबन में आए, अभी इंजीनियरिंग जब पढ़ते थे, हमारे पास कैमरा था, उस वक्त बाबा की एज 82 होगी या 80 होगी जब हम आए थे, 58 में या 57 में आए थे याद नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा नजारा देखा, सबसे बड़ी बात तो ये देखी हमने, उस वक्त बाबा बच्चों के साथ खेल रहे थे। अभी जो शांति स्तंभ है या इधर ट्रेनिंग सेंटर है, ये सारा पूरा मैदान था, टेनिस कोर्ट था, वहां बाबा बच्चों के साथ होते ना, ये क्रिकेट खेलते हैं आजकल के, ऐसे छोटी गेंद को ज्यादा बेचुरतन उनको गेंद फेंकते थे और बाबा खेलते थे, बच्चे सारे पकड़ते थे। ये नजारा देख करके बड़ा अच्छा लगा, कहां शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा और सब ये ऐसा ब्राह्मण बच्चे कैसे, कितना सुंदर नजारा है। तो मैंने एक फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने खेल बंद किया, कहता बच्चे नो, नहीं लेनी। मैंने बाबा से कहा क्यों, बाबा ने एक महावाक्य शिक्षा को उच्चारण के बच्चे मेरी तो फोटो आएगी नहीं, ये कौन बोल रहा है, कौन बोलता है ये, मेरी तो फोटो आएगी नहीं, निराकार शिव बाबा बोल रहे हैं ना बच्चे, ये शरीर तो किसी काम का नहीं। यदि बाबा हमेशा इन चीजों से परे थे, ये फोटो, ये वो चीज, उसमें वो चीजें, मेरी वो इन इस प्रकार की नहीं, खत्म, यानी शरीर को मत देखो, देखना किसको है, आत्मा को देखो। बाबा कितनी बार 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 कहते हैं बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप प्रैक्टिकल शिक्षा दी बच्चे, इन चीजों से परे, फोटो से परे, इन बातों से परे। खेलते समय भी किससे, बाबा पूछते थे किससे खेल रहे हो, पूछता था बाबा खड़े होकर के किससे खेल रहे हो, शिव बाबा से खेल रहे हैं। जब हम पैदल चलेंगे, बाबा पीछे मुड़ के पूछेंगे बच्चे किसके साथ चल रहे हो, जब खाना खाएंगे पूछेंगे बच्चे किसके साथ खा रहे हो। तो ये बार बार बाबा जो थे शिव बाबा की याद कराते थे, और ये भी कराते थे कि तुम आत्मा हो शिव बाबा को, प्रैक्टिकल कराते थे। एक और नजारा देखो, हम 57 की बात है, उस वक्त सभी हमारे जो थे पूर्वज जिंदा थे, बाबा की युगल जो सोदा थी वो भी जिंदा थी। तो जब बाबा को क्या बोलती थी, बाबा, अब बाबा उसको बच्ची बोलती थी, बोलो, और मम्मा की माँ रोचा थी, वो मम्मा को मम्मा बोलेगी और मम्मा उसको बच्ची बोलेगी। तो कितना जबरदस्त है, मालूम नहीं पड़ता था कि आपस में कोई लौकिक संबंध भी यहाँ, संबंधी भी यहाँ है कि नहीं। हमारी दादी गुलजार है, उनकी मदर थी, और ऑलराउंडर, हम कितने साल पांडव वन में दिल्ली में रहे, हमें नहीं मालूम पड़ा कि ये ऑलराउंडर दादी जो है वो दादी गुलजार की माता जी है। ये लौकिक से बिल्कुल पार थे, एकदम अलौकिक, कोई लौकिक की बात नहीं। तो ऐसे बनना हमको, बाबा क्या कहते हैं, जब आज मुरली में क्या था, जब तक पूर्ण तन मन धन सब नहीं भूला है, देश है देह के संबंधियों को नहीं भूला है, अपने को आत्मा नहीं समझा है, और मुझे याद, मेरी शरण में मुझे याद नहीं किया, तो कैसे पहुंचेंगे मेरे पास। तो ये प्रैक्टिकल नजारा देखा हमने वहां पर, तो बाबा ने ये कहा। तो इस प्रकार से हम पहले, ये पहली मुलाकात बाबा से थी, मम्मा बाबा दोनों से मिल करके उनसे फिर हम वापस आए। फिर हमारा पूरा लौकिक परिवार ज्ञान में आ गया, इंजीनियरिंग पास कर ली, पास की किसी प्रकार से पास की। हम पहले फर्स्ट आया करते थे हर का, लेकिन जब बैराग आ गया, पढ़ने की इच्छा नहीं, बाबा ने कहा पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो फिर भी किसी न किसी प्रकार से वो लेकर के डिग्री लेने हम गए नहीं, बाबा से मिलने के लिए माता पिता को लेकर के फिर आए। और बाबा ने तो कहा, बच्चे मैंने तो कहा था तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, तो बच्चे तुम सेवा में लग जाओ। पहले था एक इंजीनियर डिग्री होल्डर को बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कोई जाप करने की दरकार नहीं है। उस वक्त कम भाई बहन थे, सेवाधारी भी कम थे, अब तो बहुत सेवाधारी हैं। तो हमको भेज दिया भ्राता जगदीश जी के साथ, 3-4 साल तक हम जब भ्राता जगदीश जी के साथ रहे, बड़े 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 भारतीयों पूर्वजों के साथ हमें मिलने का, उनके साथ मिलकर सेवा करने का, कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का, उनसे इंस्ट्रक्शन लेने का, हर प्रकार की उनसे वो उनके साथ मिलकर चलने का मौका मिला। भ्राता दादा विश्वकिशोर जी थे, उन्होंने हमें प्रिंटिंग का पहले पहले काम सिखाया। दादा भ्राता जगदीश जी, दादा विश्वरतन जी, दादा चंद्रहास जी, जितनी भी हमारे भाई थे, सबसे भी साथ मिलकर के काम करने का मौका मिला। सब दादियां, दादी प्रकाशमन जी, दीदी मनमोहिनी जी, जितनी दादियां, दीदी ब्रजेंद्रा जी, दादी चंद्रमणि जी, सभी के साथ किसी न किसी प्रकार से मिल करके उनके उनको सहयोग देने का और सहयोग लेने का हमको मौका मिला। बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने अभी कुछ समय पहले कहा था, जो बाबा मामा से मिले हुए हैं साकार में, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। हम तो कहता आप सभी का सौभाग्य है, भले अव्यक्त मिलन, अव्यक्त बाप दादा से तो आप मिलते ही है। फिर हमें वहां पर गए ब्रदर जगदीश जी के साथ, 3-4 साल सेवा करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला। फिर हमें चित्रशाला बनाई, हमें एक वो जब चित्र बनने शुरू हुए तो हमने एक स्टूडियो बनाया, उसमें 3-4 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, तो चित्र हमने बनाने शुरू किए, सीढ़ी का चित्र बनवाना शुरू किया, बाबा को भेजा, बाबा को बहुत अच्छा लगा। तभी फिर बाबा से हमारी पत्र आने हमको शुरू हुए। बाबा चाहते थे, यानी दीदी भी चाहती थी, बाबा भी चाहते थे ये कुछ कार्य करें। तो बाबा हम एक बार क्या हुआ, क्योंकि भाई बहुत लंबा टाइम कम है, तो हम एक चित्रों का सेट बनवा करके आर्टिस्ट से 20 चित्रों का बाबा के पास मिलने के लिए मधुबन में आए। उस वक्त ये हिस्ट्री हाल बन चुका था, बाबा ने चित्र वहां पर रखे और बाबा ने पूरे देखे, कोई करेक्शन दी, इंस्ट्रक्शन दी, कई बातें बताई, फिर बाबा अपने कमरे में आए तो हमको बुलाया है। हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट थी चित्र बनवाने की, बुलाया बाबा ने। और मैं नीचे, आप बाबा का कमरा आपने देखा होगा, गद्दी है, इधर चारपाई है, मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे मेरे साथ गद्दी पर बैठो। मैं तो अपने को बहुत छोटा, हमने क्या काम किया था, बाबा तो शायद किसी को टच करके बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी काम करा सकता है। मैं नीचे बैठ रहा था, बच्चे मेरे साथ बैठो, गद्दी पर बैठो, बड़ा प्यार किया। जब मैं गद्दी पर बैठने लगा तो बाबा ने फिर वरदान दिया, मैं सुनाता हूँ, बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा कार्य हुआ। बाबा ने कहा, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, कहां पर, सतयुग में। अभी देखो आप सभी बाबा की सेवा में लगे हुए ना, कोई सेवा केंद्र इंचार्ज है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ भी है, भले अपने घर में भी है तो समझते हैं ये बाबा का घर है, बाबा की दुकान है, बाबा की सेवा, तो वो बाप की गद्दी संभाल रहे हैं ना। अगर मानो वो जो बाप की सेवा को संभालते हैं यहां पर, तो जरूर वहां पर भी बाबा की गद्दी को संभालेंगे, यानी लक्ष्मीनारायण की गद्दी को संभालेंगे। वी आर टू फॉलो, बाबा को फॉलो करना ना। तो बड़ा मजा आया, ये वरदान सुन के बड़ी खुशी हुई, इसे बहुत उमंग उत्साह भरा। हम बताएं तो हम वापस गए, एक चित्रशाला बनी, उसमें चित्र बनने शुरू हुए। उस वक्त तो चित्र हाथ से बनाते थे, आज तो कंप्यूटर से क्या हो चित्र बन जाता है और फ्लैक्स प्रिंटिंग हो जाता है, उस वक्त तो हाथ से सारी बात होती थी। तो चित्र बनते थे, बाबा कहता चित्र वहां भेजो, इस सेंटर पर भेजो, हजारों सैकड़ों प्रदर्शन तो बनी होंगी, सैकड़ों म्यूजियम बने, सैकड़ों कई मेले बने, इस प्रकार से चित्रों की सेवा बहुत शुरू होगी। और बाबा कहते थे बच्ची ये अच्छा म्यूजियम बनाओ, बाबा खुद देखने के लिए आएंगे, खुद उद्घाटन करने के लिए आएंगे। दिल्ली में बना, जयपुर में बना, चंडीगढ़ में बना, बहुत जगह जगह बना। तो बाबा ने इस ये सेवा में हमको लगा दिया, बहुत बड़ा सौभाग्य था। उन दिनों की बहुत पुरानी बात, 65-66 तब की बात है, अब तो बहुत उसके बाद भी 70 चित्र बनते गए, हम उस कार्य में लग गए। इस प्रकार से सेवा की सेवा होती गई। और फिर बताया ना 1982 में जगदीश भाई सब फॉरेन की सेवा में बिजी हो गए, तो हमको कहा ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी में आप संभालो, आप काम करो, उसमें भी कार्य चलता रहा, बहुत बना। इस प्रकार से बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा ली। हम बताएं बाबा को हम देखते थे, क्या देखते थे, हमेशा बेफिक्र बादशाह थे, ऑलवेज। कभी बाबा को हमने देखा नहीं कभी गुस्सा कर रहे हो या कभी चिंता में हो, ऑलवेज बेफिक्र बादशाह। अब जब बाबा योग कराते थे उनकी टांग ऐसे खेलती थी, बेफिक्री दिखाते थे और अथॉरिटी थे जबरदस्त। ये नहीं कि बाबा कहते ये चीज बनाओ, देखो सीढ़ी के चित्र में आप देखेंगे वो गुलजारीला डंडा लेटा हुआ है, नीचे उसके वो है कांटों पर लेटा हुआ है और वो फॉरन वाले उसको पैसा दे रहे हैं, 5 ईयर प्लान की ऐसी बात कुछ है। बाबा कहते थे नहीं करो, ये कोई कुछ कहेगा कुछ डरने की बात, रियलिटी है, इट इज रियल कि भारत जो का सरताज था कंगाल बन गया है। बाबा ने कहा चित्र बनाओ पैराडाइज लास्ट पैराडाइज गेन, पहले लक्ष्मीनारायण की दिखाओ, सीताराम को दिखाओ, फिर वो सिंगल ताज वाले दिखाओ, फिर वो सिंगल ताज भी वो निकाल दिया, वो दिखाओ, रावण ने ले लिया, फिर वो पर्स भी निकाल दिया। नहीं ऐसे से बाबा चित्र बनवाते थे कि लोग एक तो कार्टून टाइप के लगता था कि वो उन पर वो हो रहा है, जो रियलिटी है वो बाबा दर्शाते थे। कभी किससे वो बात नहीं थी घबराने की बात, गवर्नमेंट क्या कहेगी वो क्या कहेगी, नो इट इज रियलिटी, रावण राज बाबा कहते थे, राम राज कहाँ है। इस प्रकार से बाबा के संग मिलते जुलते खाते पीते हुए सब करते करते बाबा के साथ 12 साल तक में बाबा मम्मा से मिलने का मौका मिला। मम्मा हमारी क्या थी, एकदम फरिश्ता थी, चलती थी तो सीढ़ी उतरेगी ना कभी आवाज नहीं आती थी, मुरली के बाद कभी मिलने जाओगे सदा उसमें होती थी, क्या नाम मंथन चिंतन में होती थी। कभी कोई बात कहनी हो मुख से नहीं बोलेंगे, मुस्कुरा देंगे तो बात समझ आएगी। मैं एक बताता हूँ छोटी सी बात, हम कभी एक बार मम्मा के साथ भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा भोजन ऐसे बैठे थे, तो मैं चम्मच मेरा आवाज कर रहा था थाली में, तो बाबा मम्मा मुस्कुरा दी, मैं समझ गया कि देखो जब खाना खाते समय कभी आवाज नहीं आनी चाहिए, ना मुख की आवाज ना उसकी, बड़ा धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम समझा दिया। इस प्रकार कई बातें थी जो मम्मा केवल मुस्कुरा करके ही समझाती थी, चलते रहे। बाबा हमेशा कहते थे मेरी महिमा मत करो, ब्रह्मा बाबा कहते थे उसकी करो। जब कोई बाबा के सामने कोई गीत या कविता सुनाता था तो जब ब्रह्मा बाबा का नाम आएगा ना कहते चुप हो जाओ बस, वो कहता उस एक को ही याद करो, बुद्धि लोग उसमें लगाओ। इस प्रकार से बाबा मम्मा के साथ चलते चलते और मिलते मिलते बाबा देखो देखा बाबा को कैसे संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन गए लास्ट तक। कैसे बने कर्मातीत फरिश्ता, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, ऐसे तो नहीं है कहाँ उसका धीरे 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 करते कैसे हो गए। तो हमको भी क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं हम बोलो, क्या बनना चाहते हैं, बाप समान कर्मातीत फरिश्ता, ठीक है यही बनना ना, यही हमारा लक्ष्य है ना। तो कैसे बनेंगे पहले बताओ, कैसे बनेंगे बाबा ने क्या किया, देखो हम बने बाबा को जब देखते थे सारे गुण जो शिव बाबा में थे वो ब्रह्मा बाबा में उपस्थित हो गए थे, ज्ञान के सागर। अब देखो अंत तक 1969 18 जनवरी कितने अव्यक्त होने से एक दो घंटे पहले बाबा के मुख से क्या निकल रहा था, ज्ञान की धारा बह रही थी। कभी कभी वो ज्ञान सुनाना उनके ना हो, हमेशा ज्ञान अमृत निकलता रहता था। ये देखिए ज्ञान के सागर थे वो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बन गए। वो पवित्रता का सागर थे। शिव बाबा पवित्रता के सागर, वो उनके भी पवित्रता पर कितना जोर दिया उन लोगों बाबा ने, कुछ भी हो जाए बाबा कहते कुछ भी हो जाए पवित्रता को छोड़ना नहीं है। कितने झंझट हुए, कितने उन पर तकलीफें सहनी करनी पड़ी बाबा को, लेकिन नहीं, कितने हंगामे किए, हम पता हापुड़ का हंगामा हमारे सामने हुआ, इस पवित्रता के झगड़े हुए कितने, लेकिन बाबा ने इस पवित्रता के लिए कितना भी सहन, गाली खाई बाबा ने हमारे सामने, हम जब ज्ञान में हमको भी गाली मिली, ब्रह्मा बाबा को भी गाली मिलती थी कि क्या सिंधिका आगे पहुंचा है। सब कुछ सहन करते हुए भी, सब कुछ फेस करते हुए भी पवित्रता का उसका जो गुण था वो उसको अपनाया और लोगों को अपनाने के लिए कहा। शांति के सागर थे, हम शांत बैठते थे, शांति की वाइब्रेशन हमको चारों तरफ फैल हुई दिखती थी। वो प्रेम, कितना प्रेम था बात मत पूछिए बच्चों के लिए। हम आते थे, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बच्चों की पालना कैसे करते, जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं ऐसे थे। और सबको सुखदाता तो थे ही, तो जो शिव बाबा में गुण थे वो ब्रह्मा बाबा के अंदर हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो क्या हुआ, ये गुण इतने गुणों के मास्टर हो गए तो कर्मातीत फरिश्ता बन गए। हमको भी बनना कर्मातीत फरिश्ता, तो कैसे बनेंगे, उस कर्मातीत बनने की पहली स्टेज क्या है मैं आपको बताता हूं कि हम पहले तो हम ब्राह्मण जो है विकर्मा जीत बने। सोचो कि अभी हमारे हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कर्मातीत बनना, बाप समान बनना, तो नोट कीजिए कि अब इस वक्त हमारे से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। देखो अगर अभी भी कोई विकर्म होता है तो कर्मातीत अवस्था से बहुत 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 दूर है। इट इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज विकल्पाजीत, नो विकल्प। अब ब्राह्मणों के मन में बुद्धि में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, ये बहुत दूर की बात, पिछली बात रह गई है, नो विकल्प। क्योंकि विकल्प या नेगेटिव संकल्प से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ब्राह्मणों को डर होना चाहिए कि मेरे मन में बुद्धि में कोई उल्टा ख्याल तो नहीं आ रहा। नो नो नॉट एट ऑल। अगर कर्मातीत बनना है तो इज सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज नो व्यर्थ। अब बाबा क्या चाहते हैं, बाबा को पता है मेरे ब्राह्मण बच्चों में अब विकल्प भी नहीं है, विकर्म तो है ही नहीं, विकल्प भी नहीं है। पहले शुरू शुरू में बाबा कहते थे बच्चे विकल्प आता कोई हर्जा नहीं है, विकर्म मत करो। अब बाबा आप कहते नहीं, विकर्म तो है ही नहीं, विकल्प भी नहीं चाहिए, अब व्यर्थ भी नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कर्मातीत फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, नो व्यर्थ। अब व्यर्थ क्या चीज है, व्हाट इज व्यर्थ। लोग कहते हैं पहले सोचते थे क्यों क्या कब कैसे ये करना तो व्यर्थ है। दादी गुलजार जी कहते हैं नहीं, अभी आप यहां बैठे हैं, अगर आपकी बुद्धि बाहर चली जाती है या घर चली जाती है या किसी संबंध में चली जाती है वो भी व्यर्थ है। जितना समय हम जहां जिस बुद्धि को जहां लगाना चाहें, मन को जहां लगाना चाहें वहां लगा रहे, वह असमर्थ। तो नो व्यर्थ, और क्या होना चाहिए इसके आगे और है, व्यर्थ अतीत, फिर है साधारण अतीत। नो साधारण, साधारणता नहीं चाहिए, अब असाधारण हो, विशेष हो। बाबा का हर कदम, मैं बताऊं हमने देखा बाबा को, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था। हम बता दें है ना, बाप समान बनना है, हर कदम उनका कदम कदम पे है ना, पदम, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था। तो हम ब्राह्मणों का भी हर कदम विशेष हो, हर कर्म विशेष हो, हर बोल विशेष हो, और हर संकल्प भी विशेष। अब हम बताएं आपको इन सब चारों में जो है संकल्प है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। हम चाहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना या इतना ऊंच पद पाना, उसके दो क्राउन होते हैं, क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट। ये शुद्ध संकल्पों से ही ये दो क्राउन मिल सकते हैं। पॉजिटिव संकल्प से ही पावर भी आती है और प्योरिटी भी आती है। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने से ही प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी। वही चाहिए सत्युग में, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट, और कुछ नहीं करना। देखिए कहते एज यू थिंक सो यू विल बिकम, ये नियम है। साइंस भी कहते हैं जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। अगर हम सदा शुद्ध सोच रहे हैं मैं आत्मा हूं, यही सोचना, कोई बड़ी बात नहीं करनी है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मस्तक मणि हूं, स्वाजन हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवता हूं, इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहना। जब ये संकल्प आप कर रहे होंगे तो व्यर्थ तो आएगा ही। व्यर्थ को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि शुद्ध संकल्पों में रमण करते चलो, करते चलो, करते चलो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, यही शुद्ध संकल्प हमारी मन में रहे, मन में संकल्प हो, बुद्धि उसको देखे। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, स्वतंत्र हूं, स्वागिन हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। यह आत्मा के बारे में, घर को परम धाम का, निराकारी निराकार दुनिया में रहने वाला हूं, निराकार शिव बाबा का बच्चा हूं। जो बाबा ने पांच स्वरूप बताए थे, आप करते हैं वो पांच स्वरूपों को? बाबा ने कहा था दिन में 8 बार करो, कहा था ना बाबा ने, बहुत पहले कहा था, कई साल पहले। तो क्या आप अभी आप करते हैं? नहीं करते होंगे, बहुत कम करते होंगे। तो यदि हम ये बार बार 8 क्या जितने बार भी समय मिले, निराकारी स्टेज, आकारी स्टेज, निर्विकारी स्टेज, अलंकारी स्टेज और निरहंकारी स्टेज, ये 5 शब्द हैं, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी। निराकार आत्मा और आकारी फरिश्ता, निर्विकारी देवता, अलंकारी पूज्य और निरहंकारी ब्राह्मण। ये 5 शब्द भी अगर हम याद करें और उस स्थिति में स्थित हो जाए, स्वरूप में स्थित हो जाए, तो हमारे शुद्ध संकल्प हमारे जमा होते जाएंगे। इसको बार बार कितनी जवाब, यानी कि 8 बार जब भी समय मिले इसको बार बार रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं। बाबा क्या कहते हैं, सबको आत्मा देखो, आत्मा समझो। अभी आप जाएंगे यहां पर खाना खाने जाएंगे तो क्या ये भूल तो नहीं गए? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, फिर से रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। सुन लीजिए, भक्ति मार्ग हमारी यादगार है। क्या लोग एक गीत को बार 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 गाते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण? हम अंदर में गाते हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, अंदर में हम जमा करते हैं, वो बाहर आवाज से करते हैं। हम मुख्य शुद्ध संकल्प करते हैं और बुद्धि उसको देखती है। इस प्रकार से अभी आप यहां पर आए हैं, और काम तो कोई है नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यही बार बार इस 5 स्थितियों को, 5 स्वरूपों को बार बार रिवाइज करते चले, जिससे और कोई साधारण संकल्प आए नहीं, साधारण अतीत बन जाएंगे, विकर्माजीत, विकल्पाजीत, व्यर्थ अतीत, और साधारण अतीत बनने के बाद ही बनेंगे कर्मातीत फरिश्ता, जैसे हमारा बाबा बन गया। बाबा ने जब शरीर अव्यक्त हुए, ना उनको शरीर याद था, कोई बीमारी याद नहीं थी, डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, ना लौकिक संबंधी कोई था, ना अलौकिक याद, एकदम मैं और मेरा बाबा चल उड़ के चले गए, कोई किसी को बात। इसी प्रकार से सबको ये पेपर आना है, शरीर तो सबको छोड़ना ही है, विनाश कब हो कैसे हो छोड़ो बात को, हमको अपना शरीर तो छोड़ना है ना, उसके लिए अपनी तैयारी करनी है। यही अगेन एंड अगेन, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। वस्त्र ढीले होते जाएंगे, फट से आत्मा इस शरीर से निकल के अपनी बाबा की गोद में समा जाएगी। ये हमारा अपना अनुभव है, हम भी इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, आप भी लगिए, और ज्यादा तेज कीजिए कि इस पांच स्वरूपों को और भी जो शुद्ध संकल्प है उसमें बार बार रमण करते चलिए, करते चलिए। और कुछ व्यर्थ क्या, कुछ कुछ आने मत दीजिए। यही पुरुषार्थ है, मैं समझता हूं, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना। ओम शांति, ओम शांति।
तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं।